राज बैट पर जीतें, क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाएं, अविश्वसनीय स्लॉट्स खेलें, तीन पत्ती अंदर बाहर और रोलेट में सबसे ईमानदार लाइव कैसीनो पर जीतें। हमेशा खुशी से नाचने का कारण।
हेलो।
अरे तुम अभी तक ऑफिस में हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ।
अरे क्या कह करते हो?
वैसे तो तुम मुझे फोन नहीं करती,
लेकिन आज बेटा आ रहा है तो दिन दिन बाद
बस निकल ही रहा हूँ मैं।
आओ कितनी बार लाओ रहा तुम?
बड़ा चला था
ये क्या? आपको पता है ना घर में और कितने काम बाकी है।
क्यों परेशान हो रही हो? जानता हूँ तुम वीर को बहुत मिस करती हो। अब कुछ दिन यही हमारे पास रहेगा। वो
12 मार्च 1993, मुंबई में 12 अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। पहली बार देश ने ऐसा आतंकी हमला देखा और इन ब्लास्ट ने मुंबई पुलिस और आम आदमी को उस चीज से वाकिफ करवाया जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, आरडीएक्स। मुंबई पुलिस इस केस पर दिन रात काम करती रही और जिस ऑफिसर ने कई सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करके सिर्फ 48 घंटों में इस केस को सॉल्व किया वो थे इंस्पेक्टर कबीर श्रॉफ।
मगर सर सुनने में आ रहा है इस ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड बिलाल अहमद और टाइगर इंडिया छोड़ के जा चुके हैं।
जर्नलिस्ट की ये खबर बिल्कुल सही थी। ब्लास्ट से 2 दिन पहले टाइगर और बिलाल देश छोड़कर भाग चुके थे। टाइगर ईरान चला गया और बिलाल अहमद पीओके उमर हफीज के पास। उमर हफीज आईएसआई के सारे गैर कानूनी काम करता था और 93 ब्लास्ट के बॉम्बर्स को एक्सप्लोजिव बनाने की ट्रेनिंग भी उमर के जरिए ही दी गई थी।
हमने ये भी सुना है कि मुंबई में 1000 किलो आरडीएक्स लाया गया था जिसमें सीरियल ब्लास्ट में सिर्फ 400 किलो यूज हुआ है और 600 किलो अब भी मिसिंग है। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है?
किसी को नहीं पता था कि इन्फॉर्मेशन सच थी या एक अफवाह, मगर सिर्फ कबीर श्रॉफ जानता था कि वो 600 किलो आरडीएक्स इंडिया में ही कहीं दफन है और उसे दफन करने वाला कोई और नहीं बिलाल अहमद है। बिलाल आज से अब हमारे साथ रहेंगे। 1999 में उमर ने आईएसआई की मदद से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर की शुरुआत की और बदले में आईएसआई ने उन्हें कारगिल की जंग में इस्तेमाल किया। मगर जंग के दौरान उमर का बड़ा बेटा इमाद हफीज इंडियन आर्मी के हाथों मारा गया। इमाद की मौत की खबर सुनकर उमर के छोटे बेटे रियाज और रजा लंदन से अपनी पढ़ाई छोड़कर फौरन मुजफ्फराबाद लौट आए।
अब हम वापस नहीं जाएंगे। सरहद पार कोई भी महफूज नहीं रह पाएगा।
एक हफ्ते बाद मोहाली में इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है और आप सभी का इंडिया जाने के लिए 2 दिन का वीजा इश्यू किया जा चुका है। आप सब इंडिया जाएंगे जरूर पर कभी वापस नहीं लौटेंगे। वहाँ मेरा एक दोस्त है कादर उस्मानी, उसने आप सबके लिए अलग अलग शहर में रहने और काम करने का इंतजाम किया है।
थे तो ये सारे पाकिस्तानी लेकिन इंडिया में हिंदुस्तानी पहचान के साथ आम आदमी की तरह जिंदगी बिता रहे थे। ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद थे और कोई भी हो सकते थे, शायद आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉई। इन्हें पहचानना और पकड़ना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि जब तक इनका कमांडर इन्हें ऑर्डर ना दे तब तक ये किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते थे।
आज के बाद आपका सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट होगा, आपका एरिया कमांडर इन चीफ रियाज।
उमर के सबसे वफादार बॉडीगार्ड बशीर का बेटा मुख्तार भी रियाज का साया बनकर हिंदुस्तान जा रहा था और इस तरह शुरुआत हुई लश्कर के स्लीपर सेल की।
मैंने और रजा चाचू ने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल लंदन यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं। अब तो तुम भी वहां पढ़ने जा रहे हो, खूब मन लगाकर पढ़ना। वैसे भी अब यहां बहुत कुछ होने वाला है, तुम फिक्र मत करना। रजा अम्मी और अब्बू का ख्याल रखना। क्या सोच रही हो?
सोच रही हूं कि ये सब कब खत्म होगा।
ये सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। 60 साल पहले कुछ जाहिल और सियासत के लालची लोगों ने मजहब के नाम पर बंटवारा किया, बस ये सजा मिली हम जैसे लोगों को। खानदान को धक्के मारकर अपने घर से अपने मुल्क से निकाल दिया गया। 5 साल के बच्चे के सामने उसके वालिद का गला काट दिया गया, उसकी अम्मी की जान ले ली, उसकी बहन के साथ आने के बाद भी लोगों ने उसे सिर्फ एक मुहाजिरी कहा। वो 5 साल का बच्चा मैं था।
मगर ये सब करके क्या हासिल होगा?
कुर्बानी तो देनी पड़ेगी वरना हम में और उन सियासतदानों में क्या फर्क। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत पलट दूंगा।
अगर हमारे बुजुर्गों ने इस बात पर अमल किया होता तो उनकी गलतियों का हर्जाना आज हमें नहीं भरना पड़ता।
कबीर श्रॉफ। हाँ कबीर।
सर, 3 घंटे से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ।
वो मैं फ्लाइट में था, बोलो क्या काम है?
कुछ अर्जेंट बात करनी थी आपसे, अभी मिलने आ सकता हूँ?
एक्चुअली आई एम ऑन द वे, मैं आ जाता हूँ ATS हेडक्वार्टर्स। जब जब मुझे एंटी टेररिज्म स्क्वाड से आधी रात को फोन आया, अगली 4 रातें मैं ठीक से सो नहीं पाया।
In that case, you won't be disappointed, sir. रियाज हफीज का पता चल गया है। करीब 15 सालों से 40 स्लीपर एजेंट इंडिया में छुप कर रह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो 2 सस्पेक्ट मारे गए वो किसी राजवीर राठौड़ नाम के होटेलियर से मिलने अक्सर जैसलमेर जाया करते थे। दिस इज राजवीर राठौड़ सर। यह राजवीर राठौड़ और कोई नहीं, लश्कर चीफ ओमान हफीज का बेटा है। रियाज हफीज,
फॉरन अपनी टीम जैसलमेर भेजो एंड अरेस्ट दिस।
आई एम सॉरी सर, बट परमिशन के लिए रुकने का वक्त नहीं था। टीम ऑलरेडी जैसलमेर के लिए निकल चुकी है।
एंड हु इज लीडिंग द टीम?
सूर्यवंशी, वीर सूर्यवंशी।
वो पागल?
इतने सालों में 2 चीजें नहीं बदली सर, आपकी हेयर स्टाइल और नाम बोलने की आदत।
सर वैसे एक बार हम रियाज को पकड़ेंगे ना, आपकी फोटो फ्रंट पेज पे नक्की।
चाइला फोटो फ्रंट पेज पे तो आएगी, लेकिन मेडल के साथ या गले में हार के साथ ये तो भगवान ही बताएगा। उड़े बगरे एड़े
सर, एड़े नहीं बीड़े।
अच्छा खाना नहीं खाया।
थैंक यू वेरी मच।
आप यहाँ की ओनर हैं?
जी, ये रेस्टोरेंट में और मेरे हस्बैंड चलाते हैं।
ओके।
राजवीर,
क्या हुआ?
ये कह रही हैं कि इन्हें हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया।
बहुत
थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप यहाँ दोबारा जरूर आएंगे।
जरूर आऊंगी। क्या मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ?
श्योर।
थैंक यू सो मच।
लोकल पुलिस को इतला कर दो।
यस सर।
बताता चले मुंबई। हाँ लाइट लाभ कीड़े
सर पीड़े
सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से तुम लश्कर चीफ उमर हफीज के बेटे हो। 2007 में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने तुम पाकिस्तान से मोहाली टूरिस्ट वीजा पर आए थे मगर वापस नहीं गए। पिछले 13 साल से तुम यहां राजवीर राठौड़ के नाम से रह रहे हो और एक इंडियन लड़की ज्योति गुप्ता से तुमने शादी की। सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट 2011 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके बाद पुणे बेकरी, बैंगलोर बस स्टैंड, श्रीनगर मिलिट्री बेस, चेन्नई,
अहमदाबाद, श्रीनगर के बाद अहमदाबाद। शायद आपकी एजेंसी को पता नहीं वो ब्लास्ट भी मैंने ही किया था।
हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे।
अभी उनका वक्त आया नहीं, जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तुझे ढूंढ लिया तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। क्या मिलता है ये सब करके?
आपको क्या मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं? बस वही, रात को सुकून की नींद आती है जैसे तब आई थी। आज 26/11 याद है ना?
ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तुझे ठोक के इधर ही सेफ हाउस के नीचे गाड़ दूंगा। ना यहाँ हिंदुस्तान में किसी को पता चलेगा और ना तेरे बाप को पाकिस्तान में खबर पहुंचेगी।
कबीर श्रॉफ, एडीजी मुंबई एटीएस, क्लेम टू फेम 1993 मुंबई ब्लास्ट। सुना है सिर्फ 2 दिनों में पूरा केस सॉल्व कर दिया था आपने।
सिर्फ
टाइगर और बिलाल आपके हाथों से बच निकले। काफी जानकारी है तुम्हें मेरे बारे में, मगर हम भी जानते हैं कि 93 के बाद बिलाल तुम्हारे अब्बा की गोद में जाके बैठ गया है।
हाँ जान, मैं से कहती रही कि ये गलत है और अब रियाज इंडियन गवर्नमेंट की गिरफ्त में है। पता नहीं अब क्या करेंगे मेरे बेटे के साथ।
रियाज भाईजान को फांसी ही होगी, वो हिंदुस्तानी उन्हें नहीं छोड़ेंगे।
हिंदुस्तान की 2 कौड़ी की रस्सी में इतनी ताकत नहीं कि रियाज हफीज को मार सके। उसमें हमारा खून है, सिपाही है वो, मरेगा तो सीने पर गोली खाकर मरेगा।
93 ब्लास्ट केस सॉल्व करने का जितना सेटिस्फेक्शन है ना मुझे, उतना ही रिग्रेट भी कि मैं बिलाल को पकड़ नहीं पाया।
सर मैं 93 को कैसे भूल सकता हूं? उन धमाकों में ही तो मैंने मेरे मां बाप को खो दिया
और उसका अफसोस मुझसे ज्यादा शायद ही किसी को होगा। देश में पहली बार ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे और ब्लास्ट में किसी ने अपना कारोबार खो दिया, किसी ने अपना हौसला, तो किसी ने अपने घर वाले। डिपार्टमेंट और मीडिया को ऐसा लगता है कि मैं बिलाल को ट्रैक करने की कोशिश आज भी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू सेटल द स्कोर। ऐसा नहीं है। 93 में 1 टन RDX आया था जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा का पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है, बिल्कुल भी नहीं हुए। मुंबई, पोरबंदर, कोंकण, डर इस बात का है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बिलाल के पास है।
बिलाल अब वक्त आ गया तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का। वहां जाकर मुंबई पुलिस के शक को यकीन में बदल दो कि पिछले 27 साल से वो 600 किलो RDX वही उन्हीं के जमीन में दफन है। ये भाषा मुख्तार और उस्मानी को इतला करो कि बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहे हैं।
विद्या तुम घर चलो, मैं गैराज बंद करके आता हूँ।
रोज की तरह देर मत करना, जल्दी आना।
हाँ ठीक है।
विवेक तुम्हारे गैराज गया था तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। यार तुम गाड़ी तो ठीक कर देते हो मगर पैसों की बात तो करते ही नहीं।
आप क्यों चिंता कर रहे हैं, मुझे पता है आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे।
आजकल किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पैसे रखो। एक बात बताओ, तुम्हारी दोनों उंगलियां कटी कैसे?
ये अफगानिस्तान में वॉर के दौरान इन्हीं हाथों से बॉम्ब ब्लास्ट किया था।
तुम भी ना कुछ भी बोलते हो।
टाइम पर बोलता तुम्हें, ये ऐसे ही है।
निकलता नमस्कार भाभी।
नमस्ते।
कुछ भी मजाक करते हो, मैं खाना लगाती हूँ, तुम जल्दी आओ।
आपने मेरा ट्रांसफर अपने डिपार्टमेंट में करवा दिया।
इट्स ऑल राइट बॉस, तुम्हारे अब्बू ने हमारे साथ इतने साल ड्यूटी की, मुझे यकीन है कि तुम भी उन्हीं की तरह अपनी ड्यूटी निभाओगे। क्या रे तुम लोग लेट आया?
सर मैंने ये हमेशा का इसका।
सर पता नहीं ये बीबी लोगों को तैयार होने के लिए इतना वक्त क्यों लगता है।
कैसी हो गर्भवती?
सर गर्भवती नहीं, सरस्वती।
सर आज एक साल के बाद आप और रिया दीदी आर्यन का बर्थडे एक साथ मना रहे हैं, बहुत खुश होंगे ना?
हाँ खुश हूँ भी नहीं भी।
मतलब?
रिया हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है आर्यन के साथ।
ऑस्ट्रेलिया? सर उस हादसे को तो एक साल हो चुका है, आप दोनों कब तक अलग रहेंगे? सर दो लोग एक दूसरे से इतने अलग, फिर भी प्यार हुआ, शादी हुई। सर आप देखिए रिया दीदी एक दिन आपके पास वापस जरूर आएगी।
उच्च क्रिकेट विषम अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर तीन पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो राजबैट्स.com से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए अभी।
गोली चलाई है, छोड़ेंगे नहीं उसे।
मुझे अब डिस्चार्ज कब करेंगे? मुझे ड्यूटी पे जाना है।
अपनी हालत देख रहे हो तुम?
मतलब क्या? मतलब छोटी मोटी चोट है, ठीक हो जाऊंगा दो दिन में, यू कैन जस्ट लीव मी।
हाँ छोटे मोटे घाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे सर को, ड्यूटी के लिए तो अपने जान की बाजी लगाते हैं सर।
अच्छा वैसे अगर बुलेट 2 इंच ऊपर लगती तो बाजी लगाने के लिए तुम्हारे सर की जान ही नहीं बचती। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल है और डॉक्टर मैं हूं, तो जब मैं बोलूंगी तब तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा। आई होप दैट्स अंडरस्टूड। सर दो गोली लगी थी आपको, कुछ भी हो सकता था।
कुछ नहीं हुआ ना। अरे सर आपको पता है ये सिद्धि विनायक गई थी चलकर आपके लिए प्रार्थना करने।
सर अभी आप जल्दी से ठीक हो जाइए, आपके बिना इनको ड्यूटी पे भेजने में मुझे बहुत डर लगता है।
अरे रिपोर्ट
सच कहो, अगर आप नहीं होते ना मैं इनको पुलिस की नौकरी नहीं करने देती।
अरे बहुत डेयरिंग वाला आदमी है।
हाँ।
सर ये रिमोट कंट्रोल वाला बेड है, एक बार लेट के देखो क्या।
हाँ फैल जा फैल
जा। तो
अरे ऊपर आ रहा
है।
कैसा फील कर रहे
हो? एकदम मस्त।
अच्छा और पेशेंट कौन है?
हमारे सर है ना।
अच्छा तो फिर तुम पेशेंट की बेड पे क्या कर रहे हो? उठो उठो यहाँ से, ये क्या हो रहा है, ये क्लब है क्या? एंड यू प्लीज गेट अप, ये हॉस्पिटल है, लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। आप भी पुलिस वाली हैं?
मैं तो टीचर हूँ।
मेरा वाइफ है।
ये आपके पति है? आप ठीक कह रही हैं डॉक्टर?
डॉक्टर मलेरिया।
हा? मलेरिया नहीं, रिया।
डॉक्टर्स तो पेशेंट के साथ इतने प्यार से पेश आते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे कंफू पांडा बन के क्यों आ जाती हैं?
तुम जैसे पेशेंट्स के लिए ऐसा बनना पड़ता है। अगर तुम्हारी एक और कंप्लेंट आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई थिंक यू बी ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
नमस्ते, डांटिए मत, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आपसे कुछ बात करनी है एकांत में। एक्सक्यूज मी, बहरे हो।
शट अप, सी लेटर। खाना खाया तुमने?
नहीं, काफी मोटी इडली है। वाह, ये लोग ना आपको खमघा कूसड़ पकाऊ खड़ू समझते हैं।
मैं नहीं, ये
अरे छोड़ी बैठ भी। डॉक्टर हर्निया मैं आपसे बात करना चाहता
हूँ। हर्निया नहीं, रिया।
इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ।
तुम्हें हर्निया है?
मुझे हर्निया नहीं है, मुझे नाम भूलने की बीमारी है। मैं रमेश को सुरेश बुलाता हूँ और रमेश को सुरेश। आप हंसिए मत, मुझे दवाई दीजिए प्लीज। चार लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होती है मेरी, अब बर्दाश्त नहीं होता।
ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है इडियट, यू जस्ट लेजी, इसलिए तुम्हें नाम याद नहीं रहते।
मतलब आप ये कहना चाहती है कि मैं पुलिस वाला हूँ लेकिन आलसी हूँ? गलत समझ रही। अब देखिए मैं यहाँ बैठे बैठे ये देखिए कितनी तेजी से मैं फूल लेके आया, लीजिए ना, आलसी नहीं हूँ मैं।
तू जो मेरे पास रहे जादू सा यूं चलता रहे खोना है जिससे वो हो जाएगा खोना है इससे तो खो जाएगा दूर से तो होगा नहीं थोड़ा तो करीब
बोलो बेबा
सर याकूब की इंफॉर्मेशन मिली है
वो इस वक्त सेंट्रल मॉल में
तुम लोगों को यहाँ पहुंचने में कितना वक्त लगेगा
सर हम रास्ते में हैं लेकिन कम से कम 20 मिनट लगेंगे
उससे पहले तो मैं पहुंचूंगा
ओके सर
क्या हुआ
कुछ नहीं यार रूटीन कॉल रिया पहले पहुंचे ना आयरन को भी भूख लगी मुझे भी तुम दोनों यही पार्किंग लॉट में रुको मैं भी आता हूँ
पार्किंग लॉट में क्यों
मुझे कुछ काम
सूर्या व्हाट्स रॉन्ग आर यू हाइडिंग समथिंग
ऐसी कोई बात नहीं
He's out of danger now. And don't worry,
ये भी फाइन.
थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर.
तुम जानते थे कि वहां कितना खतरा है, फिर भी तुम हमें अपने साथ ले गए. आर्यन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा?
रिया, मैं तुम दोनों को पार्किंग लॉट में छोड़कर अंदर जाने वाला था. मुझे नहीं पता था वो ऐसे अचानक आ जाएंगे. और अगर आज मैं उन्हें नहीं रोकता तो कल हजारों मासूमों की जान जा सकती थी.
तो मेरा बेटा तुम्हारे लिए सिर्फ एक कोलैटरल डैमेज है. शहर में और भी पुलिस ऑफिसर्स अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपनी बच्ची की जान खतरे में नहीं डालता.
रिया, ऐसे दोबारा नहीं होगा, आई प्रॉमिस.
सूर्या, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मेरी किस्मत है, क्योंकि मैंने बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे तुमसे प्यार किया, शादी की, लेकिन अपनी बेटी के साथ मैं ऐसा नहीं होने दे सकती.
रिया,
पहले जब एक लड़की तुम्हें देखती थी तो सेफ फील करती थी, लेकिन आज जब एक माँ तुम्हें देख रही है तो उससे तुमसे डर लग रहा है.
रिया,
आज के बाद तुम हमसे दूर रहोगे. ना मुझे तुम्हारी जरूरत है, ना आर्यन को.
रिया, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो?
जिंदगी हमें हर रोज एक चॉइस देती है. फर्क बस इतना है कि तुमने अपनी बेटी से बढ़कर अपनी ड्यूटी को चुना, और मैं हमारी रिश्ते से बढ़कर अपने बेटे को चुन रही हूं.
रिया, एक बार इसकी
सर पार। आज नहीं. आर्यन चाहता था कि जाने से पहले उसका बर्थडे हम सब साथ मनाएं. सूर्या, आर्यन को ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए एम्बेसी में मुझे तुम्हारी कुछ सिग्नेचर्स की जरूरत होगी.
तुम जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगा.
थैंक्स.
पापा, मुझे मम्मा के साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं जाना है, मुझे आप दोनों के साथ यहीं रहना है. आप प्लीज कुछ करो ना पापा.
आप दोनों के जाने के बाद सूर्या सर बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे. तुम्हें लग रहा होगा कि यहाँ मैं विलन हूँ, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ सिर्फ अपने बेटे के लिए कर रही हूँ.
सर, आप एक बार बात करके देखिए ना, आप बोले तो शायद भाभी मान जाएंगे. प्लीज.
देखना, जब कबीर सर अपने भारी आवाज में समझाएंगे ना, पक्का भाभी मान जाएगी.
क्या हो रहे हैं
आप? सर, वो कबीर सर भाभी से बात करने गए. मैंने सुना तुम ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती हो.
जी.
देखो रिया, शादी जो होती है वो दो लोगों के बीच होती है, एक पुरुष और एक स्त्री के बीच का मिलन. जैसे कि ये जो पिस्टल है इसके अंदर गोली है. अब इन दोनों का एक हसीन एक संबंध है, जोड़ी है. लेकिन अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाए तो दोनों किस काम के? गड़े.
कौन भेजा उसको?
सर, कौन बोला? तो मैंने यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग?
जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल.
क्या ना रिया, अक्सर गुस्से में लिए हुए जो डिसीजन होते हैं वो गलत होते हैं.
वाओ, शादी के बारे में आप कितना कुछ जानते हैं. लेकिन हम आज तक आपने शादी क्यों नहीं की?
आई
विल जस्ट बी बैक.
अब इसे क्या बताऊं मैंने शादी क्यों नहीं की। मेरी लेंस खुली है इडियट।
गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, दिस इज मिस्टर नायर फ्रॉम द इंटेलिजेंस ब्यूरो।
दिल्ली से आया हूं, जाहिर है कोई अच्छी खबर तो नहीं होगी। रियाज हफीज के अरेस्ट होने के ठीक 3 दिन बाद मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग हुई। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कश्मीर में सेक्शन 370 स्क्रैप होने के बाद लश्कर या किसी भी दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे देश में अपने लोगों का घुसपैठ करवाना और आर्म्स एमुनिशंस को भेजना टोटली इम्पॉसिबल हो गया है। इसलिए ये हमारे देश में अब अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट करेंगे।
सर, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू ट्रैक देम डाउन।
आई नो कबीर, लेकिन हमारे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा। दे आर प्लानिंग अ बिगर अटैक देन ताज 2611।
सर, लश्कर के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हुए कुछ और इन्फॉर्मेशन एटीएस के हाथ लगी है। सूर्य।
सर, दिस इज कादर उस्मानी। पीओके में ओमर हफीज के मदरसे में जिन सोर्सेज से फंडिंग जाती है, उन्हीं सोर्सेज से इंडिया बेस्ड नूरे अमन फाउंडेशन में भी फंडिंग आ रही है और ये उस फाउंडेशन का चेयरमैन है। ये मुंबई से करीब 50 किलोमीटर दूर पड़गा में रहता है। रिलीजियस लीडर और पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड भी है, इसलिए बिना किसी कॉन्क्रीट प्रूफ के हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इश्यू तो होगा ही, बल्कि कम्युनल वायलेंस का भी खतरा है।
सर, आई थिंक एटीएस को कादर उस्मानी को बुलवाकर पूछताछ कर लेनी चाहिए।
पॉलिटिकल इश्यूज बिल्कुल छोड़ दो, बुलाओ सर।
गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग।
अबू आए, आपसे मिलना चाहते हैं।
आप बुला बुला।
अबू
कैसे हैं खान साहब? अजमेर से कब आए?
आज सुबह ही लौटा हूं सर। ख्वाजा करीब नवाज से आपके लिए नियाज लाया हूं।
धन्यवाद
सर। उस्मानी आए।
बुला।
जी सर।
बड़े सालों बाद मुंबई पुलिस ने मुझे याद किया। बोलिए
उस्मानी साहब, हमें पता चला है कि आपके ट्रस्ट नूरे अमन में जिस सोर्स से फंडिंग आ रही है, वही सोर्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर को भी फंड करता है।
देखिए ऑफिसर, हमारे ट्रस्ट में दुनिया जहान से फंडिंग आती है। अब हर सोर्स का बायोडेटा तो हम नहीं देखते।
रफीक
जी, इनकी तसल्ली के लिए अपने अकाउंटेंट से इनकी मीटिंग करवा दो। चलता हूं।
रुकिए, इतने दिनों बाद आए आप, थोड़ी और बातचीत कर लेते हैं। आईबी की रिपोर्ट के हिसाब से अब तक 11 बच्चों ने इंडिया से सीरिया जाकर आईसिस ज्वाइन किया, जिनमें से 3 बच्चे जावेद, मुश्ताक और अहमद पटगा से हैं और पटगा आपका इलाका है। और सुना है कि सीरिया जाने से पहले इनका आपके घर काफी आना जाना था।
ऑफिसर,
इतना ही नहीं, और भी कंप्लेन्स है आपकी। आप भड़काऊ भाषण देते हैं, आप धर्म के नाम पे मासूम बच्चों को गुमराह भी करते हैं।
कौन गुमराह है, कौन सही है, अब ये तुम हमें बताओगे? इस मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है जानते हो तुम?
मुसलमान का हाल? उस्मानी, आप जानते हैं कौन है? नईम खान। 30 साल ईमानदारी से पुलिस की ड्यूटी की है इन्होंने, और अब इनका बेटा अब्बास हमारे एंटी टेररिज्म स्क्वाड का एक होनहार ऑफिसर है। खान साहब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन आज भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं। ये है हिंदुस्तान के मुसलमान। आप किस मुसलमान की बात करते हैं हम नहीं जानते। उस्मानी, मुंबई पुलिस पासपोर्ट पर रिलीजन देखकर गोली नहीं चलाती, क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोकती है। तेरे रिकॉर्ड की भी इंक्वायरी चालू है, बहुत जल्द तुझे भी अंदर डालूंगा।
जिस दिन महाराष्ट्र को जलाना हो मुझे अरेस्ट करने आ जाना। खुदा हाफिज।
एक आदम बहुत बुरी जगह है, याद है 1977 माहिम गैब्रियल रोड से चोरी के इल्जाम में सबसे पहले मैंने ही तुझे उठाया था। ये कतरा था सर। ये
अबू,
ये इसका पार्टनर बिलाल,
दोनों मिलकर छोटी मोटी चोरियां करते थे, बाद में स्मगलिंग करने लगे। 93 ब्लास्ट के बाद वो बिलाल वो तो पाकिस्तान भाग गया, और ये परगा में जाकर ये धर्माधिकारी का चोला पहन लिया इसने। तब से इसका यही धंधा है मासूम बच्चों को गुमराह करना।
खान साहब रिलैक्स, क्या हुआ उस्मानी? हिंदुस्तानी मुसलमान का तेवर देखकर हिल गया? उस्मानी, इस देश में जितनी नफरत कसाब के लिए है उतनी इज्जत कलाम के लिए है। जिस दिन तेरे खिलाफ प्रूफ मिल गया ना, तुझे पड़गा से उठाकर लेके जाऊंगा। अल्लाह।
आज जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ भाईजान। सूर्यवंशी ने आपके साथ कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी।
अबू, शिवगढ़ से विवेक आए हैं।
बुलाओ।
विवेक,
कल रात आपके लिए खबर आई है, बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है।
बिलाल?
आपका अजीज दोस्त 27 तारीख को गोवा पहुंचेगा।
मालदीव की फ्लाइट में अजय गुप्ता के नाम से एक आदमी आने वाला है, उसे पिकअप करके सीधा हमारे पास लाना है।
अजय गुप्ता के नाम से? यानी अजय गुप्ता उसका असली नाम नहीं है?
जो कह रहा हूँ वो कर, 5 लाख मिल जाएंगे।
5 लाख? उस्मानी भाई का कोई खास है क्या?
ये जानने की जरूरत नहीं है।
ये आदमी को पिकअप करने के लिए अपने को 5 लाख रुपए क्यों मिल रहा है? मेरे को तो लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़।
ए लिली, अपने को क्या लेना देना? 2.5 लाख तेरा, 2.5 लाख मेरा, ऐश कर। अजय गुप्ता, माई सर जॉन मैस्कर दिस साइड सर, कम दिस वे। सर ये मेरी पार्टनर है सर, लिली। क्या है ना सर, लड़की साथ में होती है ना तो किसी को डाउट नहीं होता। ये खोलना जल्दी।
आज आपके लिए खबर है, बिलाल गोवा आ चुका है और आपका यहां से निकलने का वक्त है।
बिलाल
बूढ़ा हो गया तू कादर,
तेरा भी तो पेट निकला है।
कैसे मुक्ता?
भाईजान कैसे हैं आप?
ठीक हूं। क्या रफी, शादी हुई कि नहीं है?
जाना कहाँ है?
सावंतवाड़ी। वर्ल्ड वॉर टू से इस्तेमाल हो रहा है, सालों साल पानी में रख दो मुख्तार, इसे कुछ नहीं होता है। खैर जुमे के दिन तुम्हें इसका पता चल जाएगा।
काय हो भाऊ, ये बंगला आपका है?
जी
मैं इधर सामने ही रहता है। बंगला बहुत टाइम से बंद था, बहुत सालों के बाद आए नहीं, कभी बघितलं नाही तुम्हाला, नाव काय? माझा नाव आत्माराम आहे. इधर रहने को आया? अच्छा अंदर से
घर में काम चल रहा है.
मुख्तार, ट्रक को यहां से ले जाओ और कुछ दिन के लिए तय की जगह पर छुपा दो. क्या सोचा है बिलाल?
ये सबीना के खाला का घर था, उसका बचपन यहीं भी था, हमारा निकाह भी यहीं हुआ था.
ऐसा ही होता है, वक्त सब कुछ ले जाता है और सिर्फ यादें छोड़ जाता है. ये टिकट है तेरी, कल शाम 6 बजे की मालदीव की फ्लाइट है. जॉन तुझे एयरपोर्ट पहुंचा देगा. अगली मुलाकात परवरदिगार के दरबार में होगी.
कदर बात बोलू, मैं एक बार अपनी अम्मी के मजार पे फाते पढ़ना चाहता हूं.
दिमाग खराब हो गया तेरा? यहां तेरा एक भी दिन रुकना खतरे से खाली नहीं है और तू मुंबई जाना चाहता है. जानता है ना मुंबई में कदम रखते ही क्या होगा?
कदर 27 साल बीत चुके हैं, सिर्फ कुछ घंटों के लिए.
अमर भाई भी इसकी इजाजत नहीं देंगे.
दोस्ती का वास्ता, तुझे पता है इसके बाद मेरी सिर्फ खबर आएगी, मुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा. प्लीज कदर, एक बार,
एक दिन, सिर्फ एक दिन है. और तू जानता है अगर तुझे किसी ने देख लिया तो तुझे क्या करना है?
शहर कितना बदल चुका है.
बहुत टाइम के बाद आए क्या साहब?
93 के बाद आ जाए.
बिलाल अहमद मुंबई में है.
What? तुम्हें किसने मांगा?
सर अबू ने कहा है, मेरे साथी है.
बिलाल ये सर मरीन लाइन्स का विश्राम में है इस वक्त, बिल्कुल हमारे सामने.
खान साहब, क्या आपको पूरा यकीन है कि वो बिलाल अहमद ही है?
यस सर, क्योंकि जिस कब्र पर वो फातिहा पढ़ रहा है वो उसकी अम्मी की है सर.
आप एक काम करें, अब्बास से कहें कि बिलाल को ट्रैक करें और मेरे टच में रहे. चाहे जो भी हो जाए, बिलाल हमारे हाथों से निकलना नहीं चाहिए.
यस सर.
बिलाल अहमद इज इन मुंबई.
हाय आर्यन.
हाय आर्यन.
हाय आर्यन.
तुम तो भी आओ।
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
हम कुछ
पता है, ये दोनों मेरे पापा के साथ काम करते हैं। ये दोनों पुलिस ऑफिसर है।
बाकी तिघ माझ्या बरोबर या। करने की जरूरत नहीं है, जब सरेंडर।
और क्या मिलेगा सरेंडर करके? फांसी? नहीं चाहिए मुझे ऐसी जिल्लत भरी मौत। मैं फिर से इस मुल्क में तमाशा नहीं बनना चाहता।
ये मुल्क तुम्हारा भी है, शायद तुम भूल रहे हो।
नहीं, ये मुल्क मेरा नहीं है। कभी अपने घर को जलते हुए देखा तुमने? में तुम बड़े हुए हो, तुम्हारे माँ बाप बूढ़े हुए।
तो हम 10 लाख रुपए के प्रश्न पर हैं। क्या आप तैयार हैं? आप पैसा लेकर जाना चाहते हैं या पुरस्कार नहीं जीतना चाहते?
हाँ, मैं तैयार हूँ।
तो ये रहा 10 लाख का प्रश्न। करोड़पति बनने के लिए आपको किस वेबसाइट पर जाने और खेलने की जरूरत है? ए राजबेट, बी राजबेट, सी राजबेट और डी राजबेट।
लेकिन सारे ऑप्शंस तो एक समान हैं।
यस, ये सभी सही हैं।
आपकी बेट आपकी जीत।
मैंने देखा है, मेरे बच्चे बीवी और मुंह को जिंदा चला दिया उन लोगों ने। 27 साल बाद तभी भी चीखे सुनाई देती है मुझे।
और बदले में तुमने जो धमाकी की उसका क्या बिलाल? उन्हीं ब्लास्ट में मैंने भी अपने माँ बाप को खो दिया। चाहूं तो इसी वक्त तुम पर अपनी सारी भड़ास निकाल सकता हूं, लेकिन वो एक वक्त था जो गुजर गया। हमें उसे बुलाना होगा, आगे बढ़ना होगा। हाँ, मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो सैकड़ों मासूमों की जानें ले ली। जिन्होंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था उसका क्या,
और जिन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया उनका मैंने क्या कहा? इस मुल्क को मैंने चलते देखना चाहता, तड़पते हुए देखना चाहता हूं, और ये होकर रहेगा इंशाल्लाह।
बिलाल,
अगर अल्लाह तुम्हारे साथ होता तो अल्लाह की इबादत करते हुए हमारा अफसर अब्बास तुम्हें नहीं देखता। और अल्लाह तो छोड़ो, अगर तुम्हें लगता है जो तुमने किया वो सही था तो तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ सरहद पार चली जाती। लेकिन वो नहीं गई क्योंकि वो जानती थी कि उनके बेटे ने जो किया वो गलत किया है। जानते हो तुम्हारी अम्मी के जनाजे पर कितनी भीड़ थी? भीड़ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तुम्हारी अम्मी थी, भीड़ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने तुम्हारा साथ नहीं दिया।
अब एक और मेडल मिलेगा तुम्हें। बिलाल अहमद को भी 27 साल बाद आखिर तुमने पकड़ लिया।
बिलाल, जज्बात में आकर तुम गलत फैसला कर रहे हो।
नहीं, गलत अब तक हुआ, अब सही होगा। एक एहसान करना मुझ पे, मुझे मेरी अम्मी की कब्र के बगल में दफना।
सर के काश एक ही धर्म एक ही ऊपर वाला होता तो शायद ये सब नहीं होता।
होता,
हम इंसान लड़ मरने के लिए कोई ना कोई और बहाना ढूंढ ही निकालते।
सर, सावंतवाड़ी पुलिस स्टेशन से फोन आया था, वहां पर बिलाल अहमद को किसी ने देखा था।
एकदम 90% पक्का है साहब, वही आदमी है। मैं टीवी पर देखा उसको। क्या हलाल अहमद?
बिलाल अहमद।
हाँ साहब, वही मेरे को लगता है अंदर और भी लोग रहेंगे। मैं जैसे ही अंदर जाने का ऐसा साहब प्रयत्न किया ना मैं, तो मेरे को ऐसा ब्लॉक किया।
कितने लोग थे वहाँ?
3 लोग, 4 लोग भी हो सकते साहब। मगर जैसे ही मैं ऐसा खटखटाने को गया तो मैं किसी का तो ऐसा नाम सुना।
क्या नाम था
उसका? नाम मैं सुना।
अरे क्या नाम सुना?
नाम, एक मिनट, आप सब भी सोचते रहेंगे कैसा आदमी है, मतलब एक नाम भी याद नहीं है। देखा है ना साहब, जगह क्या चल रहा है ये मतलब आई थी। मगर साहब मेरे को ना साहब नाम भूलने का बीमारी है साहब।
दो कुछ, सॉरी सर, कोई बात नहीं, याद करके बता बेटा।
मैं कोशिश कर रहा है साहब। लेकिन क्या है ना साहब, ऐसा भारी जमाने में ऐसा बूढ़े वाला बीमारी लगा है ना साहब।
इतना भी बुरा बीमारी नहीं है।
बुरा है साहब, आप तो पुलिस में है, मतलब 7 दिन के 50 साल नाम तो ऐसे याद रखते रहेंगे नहीं। और इधर मेरे तो घर वाले ऐसा मुंशी बातें फिरते हैं साहब, और ये बच्चे लोग मेरे को बोलते ए लाल दुपट्टे वाले मेरा नाम तो बता। साहब मैं सबका नाम कैसे याद रखेंगे साहब, मेरे बच्चे थोड़े ना।
बिगड़े,
हाँ सर
बिगड़े। अरे इसको पीपल के झाड़ पे बांध, याद करेगा ना। जा तू सर जाके याद कर।
चल तू चल रे,
लेके
जाओ इसको।
सॉरी यार, आज पता चलो तुम लोग मुझे कितना झेलते हो। क्या क्या बुलाता रहता हूँ तुम लोगों को, विवान, तांबे, अब्बास, बिड़े, छे लाना। अच्छा सर ने पहली बार सबका सही नाम लिया। फॉरेंसिक टीम को बुला।
अंदर जिस पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं वो आरडीएक्स है, और इस पिट का साइज देखकर लग रहा है कम से कम 600 से 800 किलो होगा।
आर यू श्योर आरडीएक्स?
यस सर, कंफर्म।
श्योर?
यस सर।
थैंक यू।
बिलाल की शहादत जाया नहीं जानी चाहिए।
जी अब्बा।
उसे वादा कीजिए कि हमारे दोनों बेटे सही सलामत घर लौट कर आएंगे। वादा कीजिए।
यूज किया गया था।
कंफर्म आरडीएक्स?
यस सर।
वक्त आने पर हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। आप हम तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेंगे।
इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल पर कर हिंदुस्तान में सालों से रहे।
आज के बाद आपका सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट होगा, आपका एरिया कमांडर इन चीफ रियाज।
बिलाल अहमद का 27 साल बाद लौटना, 600 किलो आरडीएक्स का मिलना, उसी आरडीएक्स का रियाज के एस्केप में यूज होना, आई एम अफ्रेड बट इंटेलिजेंस ब्यूरो की थ्योरी शायद सही है। लश्कर का अगला टारगेट मुंबई होगा।
सूर्या, जहां तक लश्कर का ताल्लुक है, ये लोग गोली नहीं चलाते, दे आर नोन फॉर बॉम्बिंग सिटीज। दुनिया भर में इनके टारगेट किए हुए शहरों का रातों रात नक्शा बदल गया। एंड आई नो इस वक्त उन्हें मुंबई से कोई खास हमदर्दी नहीं।
सर कभी कभी सोचता मुंबई और मुंबई शहर के लोगों ने कितना कुछ सहा है। पहले 1993 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट, फिर 2002 घाटकों पर बस ब्लास्ट, 2006 में ट्रेन ब्लास्ट और फिर आज 26/11 साले 10 स्कूल के बच्चे स्कूल बैग लेके आए, हमारे 17 ऑफिसर्स और 170 सिविलियंस को मारा।
सूर्या वो लोग कब आएंगे, कैसे आएंगे ये मैं नहीं जानता, पर एक बात जानता हूं, वो आएंगे जरूर।
इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को।
आधा घंटा हो चुका है। जस्ट फॉरगेट इट। बहुत मुश्किल से मुझे 4 दिन बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। डोंट मिस इट।
डोंट वरी, नहीं मिस कर।
तुम्हें ये काम आता भी है?
तुम्हें आता है?
सर मुझे आता है ना, क्या है ना, मेरे पिताजी मैकेनिक थे। क्या मैं देखूं?
हाँ देख। हाँ। तेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, देख ले। हाँ।
सर मेरे पिताजी जिंदा है।
सॉरी।
मैडम आप गाड़ी में बैठ जाना। सर बता ना सर।
बॉम्बे तुम्हारे लिए चाय लाया।
उसका नाम तांबे है। वंदना कैसी है?
बिल्कुल ठीक है मैडम। आपको कभी आइए ना घर पे।
एक बार जाने से पहले मैं जरूर आऊंगी
जी। और मैडम आपको याद है एक बार आपका एनिवर्सरी था और आईटी सरप्राइज दिया था सर ने आपको, हम लोग भी थे ना उधर। मतलब ऐसी बारिश हो रही थी।
हैप्पी एनिवर्सरी जी।
आई कांट बिलीव दिस।
सरप्राइज हो कि मुझे हमारी एनिवर्सरी याद है?
नहीं सरप्राइज हूँ क्योंकि तुमने मेरा सही नाम लिया।
ओ
हीरो क्या क्या करें।
प्रिया मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए लाइफ में बहुत कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं और उसके लिए थैंक यू।
थैंक्स टू यू मुझे इतने साल झेलने के लिए।
अरे हम तो बूढ़े हो गए हैं एक दूसरे को झेलते झेलते।
बूढ़े हम? एक्सक्यूज मी मिस्टर सूर्यवंशी, प्लीज स्पीक फॉर योर सेल्फ।
आ जाओ परेशान कर, अंदर चलो।
क्या हुआ?
बोला था ना बूढ़े हो गए हो तुम।
को ढूंढ रहा हूं जिसे बारिश में भीगना पसंद था।
वक्त के साथ वो रिया भी बदल चुकी है।
मुंबई में ब्लास्ट इन 7 जगहों पर होंगे। सीएसटी, गेटवे ऑफ इंडिया, दादर मार्केट, लोअर परेल, बीकेसी, बांद्रा स्टेशन, मीनार चौक, एंटी टेररिज्म स्क्वाड हेडक्वार्टर्स।
लेकिन रियाज भाई, पुलिस हेडक्वार्टर्स में आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी लेके जाना आसान नहीं होगा।
पुलिस हेडक्वार्टर्स में हम ब्लास्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम वहां खुद जाएंगे, फिर देखते हैं कि मुंबई पुलिस अपने शहर को बचाती है या अपने आप को।
सर, बिलाल अहमद को इस आदमी ने गोवा से पिक किया था, बट इमिग्रेशन से पता चला है कि ये इस वक्त बैंकॉक में है। एंड आई रियली थिंक वी शुड गो फॉर इट सर।
तुम और विमान बैंकॉक के लिए निकलो, वहां की एजेंसी तुम्हारी मदद करेगी। सीएम से मैं बात कर लूंगा।
जी मुंबई पुलिस, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है हमारे पास। सच सच बताओ, कहां है वो बिली?
बिली सर, बिली ने लिली।
हाँ तो लिली तो बोला मैंने, तुम उस डॉन को कैसे जानती हो?
डॉन नहीं सर, जॉन।
बी सीरियस, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ। कहाँ है वो?
कौन सर?
अब तू भी मजे लेगी मेरे। हाँ, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जॉन?
मुझे नहीं पता सर, मैं तो बैंकॉक घूमने आई हूँ।
झूठ मत बोलो मुझे, एक टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी में मिला हुआ है वो, और बिलाल अहमद की मदद करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं उसे।
क्या, 5 करोड़?
हाँ 5 करोड़।
साले कमीने ने तो मुझे 5 लाख बोला था। सर अभी है ना, वो थोड़ी देर में आने ही वाला है, आप उसको अरेस्ट कर लो सर। इंडिया की दुश्मन सर, मेरी दुश्मन, मैं आपकी हेल्प करूंगी सर, मैं देश की बेटी हूँ सर।
हमसे चलाकी मत करना, देश की बेटी ही रहना, देश की माँ बनने की कोशिश मत करना। दिली,
उसको नहीं, स्कूल का।
चमड़ी उधेड़ देना सर, एक नंबर का हलकट है सर, कुत्ता है ये कुत्ता। सर आप तो जानते हैं ना सर, मैं तो
देश की बेटी हूँ। बोल भाई।
सर वो मेरी लिली मुझसे बहुत प्यार करती है, उसने आपसे मेरी जान की भीख मांगी होगी ना, प्लीज उसको कुछ मत करना, छोड़ देना आप। आप तो हंस कर रहे हो,
इससे बड़ा ढक्कन नहीं देखा। चल बोल आगे बोल।
देखो साहब, गोवा में मेरे गाड़ी का रेंटल का बिजनेस है, तो ये कादर उस्मानी के साथ मेरा लेन देन चलते रहता है। एक दिन उसका मेन आदमी रफीक मेरे पास आया और उसने बोला कि अजय गुप्ता नाम का एक आदमी एयरपोर्ट पे आएगा, उसको उठा के होटल में छोड़ने गए। तो मैं भी बोला ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन गॉड स्वेयर, मेरे को पता नहीं था कि अजय गुप्ता इज बिलाल अहमद है। पता इस नहीं कि वो अजय गुप्ता रियल में बिलाल अहमद है, अभी पुलिस आपको ढूंढेगी ना। और ये इधर बैंकॉक भेजने का प्लान भी उस्मानी का ही था,
इसलिए तुझे बैंकॉक भेज रहा हूँ।
उसके साथ एक और आदमी भी था, वो जो जेल से भागा था ना, उसका नाम क्या है, रियाज करके, जो जेल से भागा था। हाँ वही
रियाज अफरी।
जी जी,
इसे किसी दूसरी जगह भेज देते हैं, बिलाल के पास।
साहब मैं बहुत डर गया था साहब,
जाएगा बैंकॉक जाएगा, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था।
एक और आदमी भी था, उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत लंबा था, 7 फुट का, उसका उंगली कट गया था साहब, दो ऐसे।
जॉन से उस आदमी का स्केच बनवा।
जी सर, और पड़गा पुलिस को मैं इन्फॉर्म कर दूं सर।
जॉन को हमने अरेस्ट कर लिया, इस बात की खबर इंडिया में किसी को नहीं होनी चाहिए।
जी सर।
अगर उस्मानी को भनक भी पड़ी तो भाग जाएगा सारा, उसको तो मैं खुद जाकर उठाऊंगा।
भाईजान पुलिस आई है।
जिस दिन प्रूफ मिल गया तुझे यही तेरे घर से अरेस्ट करके लेके जाऊंगा। तेरा वो कुत्ता है ना जॉन, पकड़ा गया। 2 मिनट नहीं लगाया साले ने अपना मुंह खोलने के लिए।
सर रफीक नहीं मिल रहा।
कोई बात नहीं अब्बास, बाप मिल गया है, बेटा भी मिल ही जाएगा।
अंदर आने से पहले अगर एक नजर अपने इर्द गिर्द घुमा लेता तो जान लेता कि तेरे एक अफसर के सामने बाहर 500 लोग खड़े हैं।
माना तेरे बाराती कुछ ज्यादा हैं, लेकिन आज हम लोग भी बैंड बजाकर तेरी पलंग तोड़ विदाई करके रहेंगे चाय पानी।
सर उस्मानी
माई तेरे आज घेरे ये डेला। मौलवी साहब, मेरा नाम वीर सूर्यवंशी है। 20 साल हो गए मुझे ड्यूटी करते हुए, और इन 20 सालों में मैंने 400 से भी ज्यादा अरेस्ट किए हैं। इन अपराधियों में कोई जॉन फर्नांडिस है, कोई हरपाल सिंह है, कोई श्याम शर्मा है, तो कोई इस्माइल खान है। इंसान नाम में मजहब ढूंढता है, लेकिन कानून निष्पक्ष होता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और सारे सबूत यही कहते हैं कि कादर उस्मानी गलत है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन इसकी बातों में आकर आप ही के एरिया के 3 बच्चों ने अपना घर अपना देश छोड़कर आइसिस ज्वाइन कर लिया। इतना ही नहीं, लश्कर ऑपरेटिव रियाज हफीज को जेल से भगाने में भी इसी का हाथ है, और बिलाल अहमद का भी साथ इसी ने किया था। माफ करना मौलवी साहब,
लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर आप लोगों ने इसका साथ दिया तो इस एक कादर उस्मानी की वजह से पूरे कौम पर उंगलियां उठ सकती हैं। अगर आज हमने इसे अरेस्ट नहीं किया तो हो सकता है कल फिर 1993 जैसा माहौल बन जाए, और ये ना आप चाहते हैं ना हम। और अगर हम चाहें तो पूरी सीआरपीएफ को बुलाकर जोर जबरदस्ती करके इस इंसान को यहां से घसीट के लेके जा सकते हैं, और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। प्लीज मौलवी साहब, मेरा साथ दीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ये एक इंडियन की दूसरे इंडियन से विनती है।
ले जाने दो इन्हें।
गाड़ी टाकरे माता देना।
देखो उस्मानी, अगर तुमने नहीं बताया ना तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए।
फोर्स ज्वाइन करने से पहले महाराष्ट्र पुलिस की हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी होगी तूने? हिस्ट्री पढ़ी होती तो तू जानता कि कादर उस्मानी नहीं टूटेगा। अरे मार, अच्छा मजबूत शरीर है तेरा। मार।
दे, पानी दे। सर, नहीं टूट रहा है।
इतना बॉडी बनाने का फायदा क्या
है? तीसरा माइल है, चुप रे। सर,
ये कादर उस्मानी जैसे लोग जान दे देंगे मगर टूटेंगे नहीं। सिर्फ एक ही चीज है जो ऐसे लोग सहन नहीं कर पाते, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती।
सर, ये टूटेगा लेकिन कुछ अनऑफिशियल करना पड़ेगा। अगर आप परमिशन दे तो।
हाँ, मेरी परमिशन के बिना तो आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं।
विवाद कुछ दू?
नहीं सर।
कहाँ ले जा रहे हैं आप? अबू, अबू ने क्या
देखा कि और तब करा दो।
अबू,
सुन रहे हैं? दास सोये वंशी।
अबू, सुनिए।
अब देख तेरी घर की औरतों के साथ क्या होता है।
उधर मर।
हो
ये क्या काम सूत्र चल रहे? बराबर चिल्लाना खटारा।
सर, खटारा नहीं, तारा।
हाँ, दोबारा।
सर, तारा।
अरे दोबारा चिल्ला मेरी माँ।
यस सर।
तेरे को इनविटेशन दूं क्या?
सॉरी सर।
वो मुसलमान है, शास्त्री नहीं है। अब्बू बोल, अब्बू।
सॉरी सॉरी
को ले लेता यार।
रियाज का हाल मैं बताता हूँ। आज शाम रियाज और रफी दोनों मिलने वाले हैं, पर पहले मेरे घर की औरतों को छोड़। मेरे घर की औरतों को छोड़।
आई होप उस्मानी सच बोल रहा है। एंड वी गेट रियाज।
आई होप टू सर।
और वो एरिया क्राउडेड है, बी केयरफुल, वी विल हैव टू मेक अ सॉफ्ट अरेस्ट।
राइट सर। एक्सक्यूज मी सर।
श्योर।
जानती थी तुम आज भी एम्बेसी नहीं आओगे, इसलिए मैं ही तुम्हें यहाँ लेने आ गई।
रिया, क्या हम वहाँ किसी और दिन जा सकते हैं? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इस वक्त शहर में क्या हो रहा है?
शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है? अगर एक बार ये सोच लेती कि तुम्हारे अपने घर में क्या हो रहा है तो आज ये नौबत ही नहीं आती।
I'm sorry, but this
Surya, I don't care. और आज मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। प्लीज जस्ट कम।
सूर्या, तुम रिया के साथ एम्बेसी जाओ, शी नीड्स यू। मिशन विमान लीड करेगा, आई बी इन टच विद हिम, डोंट वरी।
लेकिन सर आप जानते हैं,
आई एम रियली सॉरी बट दिस इज इंपॉर्टेंट।
आई अंडरस्टैंड, गो।
थैंक यू। मुझे पर कैसे भूल जाऊं कि उस वर्दी के पीछे
एक पति था, एक बाप था। मेरा तो चलो फिर भी ठीक है, पर मेरा बच्चा, उसका क्या? छोटा है वो और आसान नहीं है बिना बाप के बड़े होना, लेकिन दीदी आर्यन के पास, उसके पापा और आपके पास आपके पति अभी भी है। मराठी में कहते हैं कुटुंब हा जीवनाचा सर्वोत्तम आशीर्वाद है, परिवार ही जीवन की सबसे खास देन है। मगर ये जिंदगी बहुत छोटी है दीदी, रास्ता समझने तक सफर ही खत्म हो जाता है, और इसीलिए इस सफर में अपनों के अलावा और कोई मायने नहीं रखता, कोई नहीं। दीदी आप एक डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाती है, और ये सब पुलिस वाले वो भी तो वही करते हैं, सिर्फ तरीका अलग है। मेरे पास तो उनकी उनकी यादों का बस सहारा है, पर आपके पास आपका परिवार है, यहाँ बिल्कुल आपके सामने है। दीदी जो हुआ वो भुलाकर अपने परिवार को समेट लीजिए।
भाईजान और हमारे अपने लोगों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। आज मुंबई शहर का हर शख्स उस दर्द को महसूस करेगा जो हम सब ने किया है। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें 13 साल बाद इस जंग में शहादत देने का मौका मिल रहा है।
पियर्स, मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ जरूर आएगी, इसलिए तुम सब यहाँ से फौरन रवाना हो जाओ। आखिरी गाड़ी का काम होते ही मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।
उच्च क्रिकेट विषम अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर 3 पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो राजबेट्स.com से 25,000 रूपए तक का बोनस पाए अभी।
सियाज हफीज,
हाँ
मैं हूँ।
तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना विद्या, मैं रियाज हफीजी हूं, मगर वो विवेक शास्त्री नहीं, मुख्तार अंसारी है। पिछले 13 साल से हम अपना घर परिवार और वतन छोड़कर यहां हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जंग है विद्या, और जंग में मासूमों की भी जान जाती है। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपने इतने बड़े मकसद को खतरे में तो नहीं डाल सकते हैं ना? हो सके तो मुझे माफ कर देना विद्या।
Thank you.
فیصد ہی نہیں دوں گا. شاید آج شام تک خبر آ جائے گی کہ ریاض اور حسن دونوں شہید ہو چکے ہیں.
ऐसा भी कुछ कर सकते हैं. हमने हमेशा यही देखा है कि उन्होंने दूसरों की मदद की है. हमें यकीन नहीं आता कि वो ये सब कैसे.
जब कोई अपना ही आंखों पे पर्दा डाल देना है तो सच्चाई सामने होते हुए भी नहीं दिखती. उस्मानी ने गलत चीज के लिए जान दे दी, लेकिन पुलिस की मदद करके तुम्हारी वजह से कई लोगों की जानें बच सकती हैं.
जी सर.
आज मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, इन्हें ध्यान से देखना. इनमें से किसी को भी तुमने उस्मानी से मिलते या तुम्हारे घर आते जाते देखा हो तो मुझे बताना, ठीक है?
जी. हाँ, ये
इसे जानती हो तुम?
जी, ये विवेक शास्त्री है.
शिवगढ़ से विवेक आए.
बुलाओ.
अरे विवेक, बड़े दिनों बाद आए.
विवेक शास्त्री,
ये अबू के दोस्त हैं.
सर, इसे तो जॉन ने भी आइडेंटिफाई किया था.
एक और आदमी भी था, 7 फुट का.
ये रहता कहाँ, करता क्या है?
शिवगढ़ में, वहाँ गंगापुर वाड़ी के पीछे इनका गैराज भी है.
क्या करे सर, शिवगढ़ चले.
जब तक हम पहुंचेंगे वो वहां से निकल चुका होगा. मुझे पता है ये काम एक ही कमीना कर सकता है.
You are under arrest.
हाँ बोल रम्बा।
सर रम्बा नहीं सिम्बा।
अरे वही लाइन खराब है, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा।
सर जल्दी बोल। सर मैं वो स्लीपर कोच मुख्तार को पकड़ लिया हूँ।
स्लीपर कोच? अरे स्लीपर कोच नहीं, स्लीपर सेल एजेंट, कुछ भी बोलता रहता है सीडी बम्बा।
सर सीडी बम्बा नहीं सिम्बा।
हाँ बोल बोल।
इधर अलग लेवल का धांधली चल रहा है सर। रियाज और उसके साथ इधर ही शुगर में छुपे थे, मेरे आने से पहले भाग गए। कुछ तो लंबा प्लानिंग चल रहा है सर। ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए हैं। 6 गाड़ी यहाँ से निकल गया, एक गाड़ी मिला मेरे को। दैट कार नंबर प्लेट इज MH02AR432। चेरी वाली गाड़ी।
चेरी वाली? अरे शेवरोले। सिम्बा तू एक काम कर, तू इंग्लिश में मत छाड़ यार, हिंदी में बोल। बस हिंदी में बोल।
सर गाड़ी का नाम हिंदी में कैसे मतलब इतना है?
मैं जो बोल रहा हूँ ना हिंदी में बोल बस।
अच्छा आपको हिंदी में सुनने का है? सुनो सर, यहाँ से 6 गाड़ी निकला है, उसमें से एक बिच्छू और दूसरा भाग्यवान।
बिच्छू भाग्यवान?
सर स्कॉर्पियो और फॉर्चुनर। नहीं समझ में आया ना आपको?
अभी आगे का इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से सुनो
सर। ये लोग वो 6 गाड़ी मुंबई में 6 अलग अलग जगह पे पार्क करने वाले हैं। लोकेशन अपने पास है।
ब्लास्ट एक के बाद एक हर 5 मिनट में होंगे
और पहला वाला 1:30 बजे। अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है सर।
तू एक काम कर, मुझे सारी डिटेल्स इमीडिएटली भेज और वो मुख्तार को ATS ऑफिस ले गया। ठीक है?
कॉपी सर।
इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। CST गेटवे ऑफ इंडिया, दादर मार्केट, पलेडियम मॉल, BKC, बैंड्रा स्टेशन, मीना चौक। गाड़ियां इन लोकेशंस पे हैं और हमारे पास सिर्फ एक है। कोर्ट को हमने इन्फॉर्म कर दिया, बट नोइंग द मुंबई ट्रैफिक आई डाउटेड कि वो 1 घंटे के अंदर इन सारे लोकेशंस पे पहुंच पाएंगे। ऊपर से हर लोकेशन से 10,000 से 15,000 लोगों को इवैक्यूएट करना, फिर बॉम्ब को डिफ्यूज करना, आई डाउटेड सर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन।
सूर्य मुंबई के लोगों को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि वहां की सिचुएशन क्या है। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा हुआ कि उनके आसपास एक लाइव बॉम्ब है, दिस गोइंग टू बी अ स्टैम्पेड।
सर आई थिंक वी शुड कॉल NSG।
गाड़ी को एयरलिफ्ट नहीं कर पाएगी, ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है।
अब आसपास के सभी लोगों को वहां से इवैक्यूएट करो, मैं आ रहा हूँ।
मगर सर मस्जिद में जुमे की नमाज शुरू होने वाली है और मंदिर में भी आरती चल रही है।
जस्ट डू व्हाटएवर इट टेक्स। बंद कर इसको कृष्णा, गाड़ी चालू कर। लोकर लोकर
अबू, मैं अकेला ये नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए।
हमारे नाम में क्या रहता है जब एक फूल के रंग हमारे
सिर्फ 5 मिनट बाकी है। दिस बॉम्ब इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन 5 मिनट्स।
सिर्फ 5 मिनट में तो बॉम्ब को भी पहुंच नहीं पाएगा।
एक काम करो, तुम ये गाड़ी हटाओ, मैं इसे निकालता हूँ। बहुत सारे लोग हैं।
लेकिन सर 5 मिनट
इट्स एन ऑर्डर सर।
हमको कितने ताजमहल है और बनाने कितने हैं। अभी पलटना है कितने दरियाओं का कितने पर्वत राहों से है राज जहाने नया खून है नई उमंगे अब है नई जवानी
लेके आया मैं ये 3 माले की बिल्डिंग को।
अगर तुमने वैसा नहीं किया तो इस बटन के दबाते ही 2 मिनट के अंदर एक ऐसा धमाका होगा जिसमें तुम्हारे एटीएस का नामो निशान मिट जाएगा। और रही बात हमारी, तो हम तो यहां मिटने ही आए हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक बार अपनी बीवी के बारे में सोच लेना।
Thank you.
रहे जुल्म के खिलाफ हम जब भी आवाज उठाते हैं तो उसे टेररिज्म कहा जाता है और आवाज उठाने वाले को टेररिस्ट। हमारी आवाज तो किसी ने सुनी नहीं, मगर अब इनकी और इनके घर वालों की चीखें पूरी दुनिया सुनेगी। इंडियन आर्मी और पुलिस ने हमारे लश्कर के 235 भाइयों को मौत बख्शी है।
235 नहीं, 275। तुम भी तो 40। बस एक बार रिया को छोड़ दो, फिर देखना कैसे हम सब तुमको मिलकर भाइयों के पास पहुंचा देते हैं।
एक मिनट। तेरे बड़े भाई से बात कर रहे हैं ना, तू वहीं पे फोकस कर।
वहीं नमस्कार। क्या वहीं नहीं, हाल तुम्हें सबको फंसा दिया ना खाली पीली। अपन बाद में बात करते हैं।
रियाज
लंबा
सिम्बा,
क्या कर रहा है तू?
एक मिनट किसी और को बात कर लेने दो सर।
रियाज भाऊ, मैं आपका फीलिंग समझता है, इसलिए मैं बोलता है एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैं बोलता हूँ जैसे अभी आपका देश है,
माइंड इज ब्लोइंग है, मस्त है, ब्यूटीफुल है,
लेकिन कभी भी कोई बाहर वाला सोचता है चलो फैमिली को लेकर उधर जाके छुट्टी मनाने का? नहीं, क्यों मालूम? कैसे मालूम रहेगा, आप खुद इधर 13 साल से छुट्टी मना रहे। लेकिन मैं बताता है आपकी वजह से। इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो टूरिज्म कम। अभी देखो अपना क्रिकेटर लोग का भी फीलिंग आप लोग को भी समझना चाहिए, जैसे अपना वसीम भाई है, मिसबा भाई है, शुएब भाई है। अभी आप ही के ये जिहाद विहाद के चक्कर में उनका तो पूरा IPL से विकेट ही छूट गया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो इनकम कम, और ये इनकम कम बहुत लोग को जमता नहीं है, मेरे को पूछो, मेरे को मालूम है। लेकिन जैसे अपना आर्टिस्ट लोग है, फवाद खान और अली जफर और आतिफ असलम, लेकिन अभी आपके चक्कर में उन लोग का भी हो गया ना दुकान बंद। इससे क्या सीखने को मिला? टेररिज्म ज्यादा तो एंटरटेनमेंट कम। और ऐसे चलता रहा ना रियाज भाऊ, तो अपने इधर की पब्लिक तो तैयार बैठी ही है, पर वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के आम लोग भी आपको ढूंढ ढूंढ के जूते चप्पल से मारने को देखेंगे।
क्या है ना रियाज, तू ये कैमरे के सामने कितना भी उछल कूद कर ले, लेकिन जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखाऊंगा मेड इन इंडिया।
कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा।
क्या अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है? तेरे को नहीं मालूम?
Thank you. सालों बाद
आप लोग का हो गया, भरत मिला, उधर वहीं फट जाएगी। चलो
सूर्या, सूर्या तुम लोग जाओ, तुम लोग जाओ यहाँ से।
हम लोग नहीं जा रहे। लेकिन तुम फंसी कैसे?
मैं तुम्हें मिलने यही आ रही थी, तुम्हें बताने कि अब मैं कहीं नहीं जा रही।
तुम नहीं जा रही? तुम और आनंद यही रहोगे हमेशा के लिए?
तुम लोग शायद भूल रहे हो, अगर ये बम फट गया तो हम सब ऊपर जाएंगे।
अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वही जहाँ की जा रही थी वो तो बताओ।
तू कैसा एजेंट है, टिकट निकालेगा इसका? पहले ये सोच, वही को इसमें से निकालने का कैसे?
उधर पूछो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट।
हाथ ऊपर करो।
टेंशन नहीं लेने का वही, ये दोनों पुराने चावल है। थोड़ा जल्दी करना सर, टाइम कम है, आरडीएस ज्यादा।
अरे चुप ना यार, तू चुप ना।
आप करो। हल्का हाथ रखना सर, कहते टच कहते टच।
तू कर ले। नहीं तू कर ले पहले।
आप करो। कम ऑन फ्रेंड, यू कैन डू इट। आज की डेट में हो जाएगा ना आप लोग का।
एक काम कर, मेरा बंदूक दे, ये हलकट को उड़ाता
हूँ। नहीं नहीं, कूल।
ये दिवाली बम नहीं है, आरडीएस है। फटेगा ना तो वही नहीं, ऐसे दीवार पे पचक करके चिपक जाएगी।
नहीं सर, मैं आपको कुर्बानी नहीं देने दूंगा।
यार बच्चे के मुंह में निकल दे।
तेरे लिए घुटने पे मैं गया, और थैंक यू इसके लिए।
बचाया तो उन्होंने ही।
लेके जाओ उसको, लेके जाओ।
यस सर।
क्या रे, गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है?
और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है?
हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अभी
सूर्यवंशी कौन है?
अरे
अरे यार, आई चा कावत।
आप बादाम खाया करो,
वो तो मैं सारा रोज ही खाता हूँ। ये देख,
आज दिन अच्छा है तेरा, मैं होता तो कब का ट्रिगर दबा देता।
आई थिंक यू आर बहुत जेलेस ऑफ मी। कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा।
आगे अपना टाइम।
हम बच नहीं पाएंगे, मगर अफसोस इस बात का है कि इस जंग में हम कामयाब नहीं हो सके। वादा कीजिए कि आप इस जंग को जारी रखेंगे। जंग जारी रहेगी, तुम्हारे अब्बा का वादा है, जंग जारी रहेगी।
ये मत सोचना कि कहानी यहां खत्म हो जाएगी। आ रहा हूं मैं।
तुझे जरा सा भी अंदाजा है मैं कहां हूं और क्या कर सकता हूं?
मैं अच्छी तरह जानता हूं तू कहां है। अब तक तू अपने लोगों को यहां चूहों की तरह छुप कर बेच रहा था, लेकिन अब बाजीराव सिंघम आएगा वहां खुले में शेर की तरह।
इंतजार रहेगा तेरा, आना जरूर।
चल सिंघम, अब गोली चलाते हैं। हम तो निहत्ते हैं, फिर बाहर जाकर दुनिया के सामने अपनी छाती चौड़ी करके कहना कैसे तूने अपनी जान बिखेर कर हम तीनों का मुकाबला किया और मार दिया। चला गोली।
Thank you.
लगता है इन लोग के माथे पे ना जय हिंद का टैटू लगाना चाहिए और भेजना चाहिए पिताजी के पास।
लुक, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिछले 13 साल से तेरे ही देश में रह के तेरे ही लोगों को मारते आ रहे हैं।
आता वाटत सगळ्यांची सटकली।